परमात्मा को के परिचय और पहचान को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। परमात्मा को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं और हम सभी सेशंस के द्वारा और इस कैंपस के वाइब्रेशंस के द्वारा हम परमात्मा को अनुभव कर पा रहे हैं, परमात्मा अनुभूति कर रहे हैं। तो सच कहें, आज दिन तक जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे, तो आज आप सभी इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा ने ढूंढा है, और करोड़ों आत्माओं के बीच आप सभी आत्माओं को चुन करके बुलाया है और यहाँ बिठाया है। तो आप सब कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं, तो आप सभी अपने लिए जरूर एक बार ताली बजाएं। तो इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए हमारे बीच परमात्मा की अनन्य रतन, अमूल्य रतन, आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो दीदी जी का तहे दिल से, करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करते हैं। दीदी जी सीनियर फैकल्टी ब्रह्मा कुमारीज। तो मैं बहनों से, दीदियों से रिक्वेस्ट करती हूं कि दीदी जी का बैचेस से और तिलक से स्वागत करें और तालियां बजती रहें। हम अपने को भी जागृत करते रहें, परमात्मा की अनुभूति करते रहें। तो दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी जी परमात्मा की राइट हैंड बनकर इस मधुबन बेहद के घर में, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में समर्पित रूप से अथक सेवाएं दे रहे हैं। आप ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, अनुभवी मूर्त आत्मा हैं, जिन्होंने अपने जीवन को के एग्जाम्पल से सैंपल बनकर अनेक आत्माओं के जीवन को संवारा है, बनाया है। तो दीदी जी का परिचय देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज, जिसे कहेंगे सूरज को दीपक दिखाना है। तो आदरणीय दीदी जी एक कुशल राजयोग एवं स्वप्रबंधक प्रशिक्षिका हैं, अर्थात सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में विभिन्न विंग्स के कार्यक्रम में अनेक विषयों पर व्याख्यान आपने दिए हैं, जैसे नारी जागृति, आदिकालीन प्राचीन संस्कृति एवं उसका आधार व आध्यात्मिकता, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इनर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। 14 साल की टेंडर एज में 1969 में आप विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और 1972 में आपने अपना अमूल्य जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित कर दिया। भारत के अनेक स्थानों पर आपने आध्यात्मिक मेलों का आयोजन और संचालन किया है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, अफ्रीका एंड मॉरिशस, कई विदेशी यात्राएं कर वहां ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग से अनेकों को लाभान्वित आपने किया है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपके लिखे गए लेख अखबारों, पत्रिकाओं में छपते रहते हैं और टीवी चैनल्स पर भी आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। तो ऐसे अनोखी आत्मा, ऐसे अमूल्य रत्न विशेष दीदी जी का मैं पुनः स्वागत करती हूं। और अब हम ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिकॉग्नाइजिंग द हायर पावर, अब उनके ही मुख से उनके वरदानी बोल सुनते हैं। और दीदी जी से मैं आग्रह करती हूं, अपने वरदानी बोल से हमें भरपूर करें और हम सुनते जाएं और उसे समाते जाएं और अनुभव करते जाएं। ओम शांति।
ओम शांति। आज के प्रातःकालीन प्रथम सत्र में स्वयं का सही परिचय आप सभी ने प्राप्त किया। आपको समझ में आ गया होगा कि मन की चंचलता का मूल कारण आत्मविस्मृति के कारण देह अभिमान है। अब हमें देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनना है, क्योंकि हम आत्मा हैं। प्रथम लेसन से अगर तीन अभ्यास रोज बार बार आप करेंगे तो बहुत जल्दी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे। एक अभ्यास है आत्मस्मृति में रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। दूसरा अभ्यास हम ये करें कि हरेक को आत्म दृष्टि से देखें, शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है, पर स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा हूं, एक शक्ति हूं। एक दो से जब भी मिले, बातचीत करें, देखें, हम उनके मस्तक में देखें कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। और तीसरा अभ्यास, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक जो भी कर्म हम करते हैं आत्मा धर्म में स्थित होकर कर्म करें। हम सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। हमें हर कर्म शांति से, शुद्धि से, ज्ञान स्वरूप बनकर अर्थात सोच समझकर करना है। हमें कोई भी कार्य गुस्से से, स्वार्थ से, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो आत्माभिमानी स्थिति योग की आधारशिला है। पर योग शब्द का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसे योग कहते हैं। इसलिए अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वो पिता परमात्मा कौन है जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते हैं। हमें ये भी पता है कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है कि परम, सुप्रीम, ऊंचे से ऊंच एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते। जब परमात्मा एक है तो उनका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मते हैं, अनेक मान्यताएं हैं, जिसको श्री राम में श्रद्धा है वो कहते हैं राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहते हैं श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि चारों ओर जो प्रकृति का अपार सौंदर्य फैला हुआ है ये प्रकृति ही परमात्मा है। कोई आत्मा को परमात्मा समझते हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, शिवो हम ब्रह्मो हम कहते हैं। कोई सब में भगवान है, तेरे में, मेरे में, कण कण में, सर्वत्र भगवान है, ऐसी भावना रखते हैं। तो एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताओं का होना सिद्ध करता है कि हम परमात्मा का सही परिचय नहीं जानते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही देते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा किसको कह सकते हैं, उनकी सही परिभाषा क्या है, वो हम समझेंगे कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं। हम तो भावना से अनेकों को भगवान समझ रहे हैं, पर सत्य क्या है? परमात्मा के सत्य परिचय की, सत्य परिभाषा की पांच बातें मैं आपके सामने रखूंगी जिससे आप वेरीफाई कर सकेंगे कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे सभी मान्य करें, स्वीकार करें। परमात्मा कोई एक देश, कोई एक धर्म, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व की आत्माओं के पिता है। सर्वधर्म की आत्माओं के परम पिता है। इसलिए सही अर्थ में परमात्मा उनको कह सकते हैं जिसे मुख्यतः सभी धर्म मान्य करे। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है ना, पांच तत्वों से बना है। स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकती है। सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। देह संबंध के बंधन में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही माता पिता भाई बहन कितने संबंध में बंधते हैं। इसलिए परमात्मा उनको कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के प्रकृति के कर्म के देह संबंध के बंधन से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को हम सदा मुक्त कहते हैं। देखो हम सभी भी भगवान को क्यों याद करते हैं? कि हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा को सभी बंधनों से मुक्त निराकार निरंजन निर्लेप कहा जाता है। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, जो स्वयं ही परम है, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है। इसलिए परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु उसको कहते हैं। पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उसे कहा जाता है। वो ही सुप्रीम परम है, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं। चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा परम है, अपनी स्थिति में गुणों में कर्तव्यों में। ऐसे नहीं आज परम है धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, अधम हो जाएंगे, नहीं, वो सदा परम है। हम आत्माओं के गुण कर्म स्थिति बदलते रहते हैं, परमात्मा परम सर्वोच्च अपरिवर्तनशील एक रस है। और पांचवी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता है और सदा दाता है। सर्व ज्ञाता है माना सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं, इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे सर्वज्ञ है। मनुष्य आत्माओं के लिए हम क्या कहते हैं? मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते हैं। परमात्मा सदा जागते ज्योत ज्ञान के सागर है, इसलिए परमात्मा को ही हम कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सतगमय, क्योंकि मूल सनातन सत्यों का ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकता, और वे सदा दाता है, देते ही रहते हैं, इसलिए उनकी महिमा में हम गाते हैं शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वे सदा देते हैं। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है, है? नहीं, बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थी, देवता थे, देवी देवता मीन्स दाता, इसलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? दाता, वरदाता दिखाते हैं। आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज हम लेवता बन गए, लेने वाले बन गए, हमें चाहिए चाहिए चाहिए। परमात्मा सदा दाता है, परमात्मा के सत्य परिचय की इस सत्य परिभाषा को बुद्धि में रखते हुए अब आप विवेक से सोचिए कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं? ये सत्य परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, धर्मात्मा देवात्मा बन सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते। इसलिए कोई भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकता। अंडरस्टूड है दूसरी बात कि जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगते हैं। लेकिन परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। तो ये महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया में आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं? इतिहास सभी जानते हैं, चाहे इस्लाम के अब्राहम है, मोहम्मद पैगंबर साहब है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, यीशु ख्रिस्त है, गुरु नानक जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और इन धर्म स्थापकों ने खुद ही सही बात बताई है कि हम गॉड के मैसेंजर हैं, हम खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो समय बीतने के बाद उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने अपने धर्म स्थापक में ही केंद्रित हो जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत विवेक से और निष्पक्ष भाव से हमें समझनी है। हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं? 33 करोड़। हाँ, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही है। इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले नहीं मानते हैं। मानते हैं? नहीं। आप अन्य धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं? नहीं मानते। तो हम इन देवी देवताओं को विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के परम पिता परमात्मा कैसे कह सकते? हम इन देवी देवताओं के माता पिता बंधु गुरु सखा पत्नी बच्चे दिखाते हैं। इन संबंधों की पालना लेते हुए बताते हैं। इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते हैं कि वे आए ही अवतरित ही इसलिए हुए असुरों का संहार करने, दुखियों को सुखी बनाने, संसार को स्वर्ग बनाने। और इन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हम इन देवी देवताओं को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए बताते हैं, दैवी राजाई करते हुए बता। देखो देवी देवताओं को कितने न अनमोल सोने चांदी हीरे मोती के वस्त्र अलंकारों से सज्ज बताते। हम इन देवी देवताओं के मस्तक पर रत्न जड़ित ताज बताते हैं, सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं, अर्थात हम उनको भोक्ता बताते हैं। परमात्मा के लिए हम कौन से विशेषणों का उपयोग करते हैं? अजन्म, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, निरंजन हम उसको कहते। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? है कोई ऐसा स्वरूप? परमात्मा का ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? मुझने की बात नहीं है, परमात्मा शब्द ही परमात्मा का सत्य परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। है वो भी आत्मा। परमात्मा रूप से परम नहीं है, गुण और कर्तव्य से ऊंचे थे। इसलिए जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। देखो, हम किसी को महात्मा कहते, अपने आप को साधारण मनुष्य आत्मा कहते हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि महात्मा माना इतनी मोटी आत्मा। और हम आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा नहीं, हरेक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जो आत्मा गुण और कर्म से महान है उनको हम महात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से दिव्य है उसे हम देवात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से पतित है उसे पापात्मा कहते हैं। है तो सभी ज्योति बिंदु आत्मा ना, परमात्मा भी रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है। गुण और कर्म से परम ऊंचे ते ऊंचे। एक मनुष्यात्मा का पिता कैसा होता है, कौन से आकार का होता है? मनुष्यात्मा। एक जानवर का पिता जानवर होता है, पंछी का पिता पंछी होता है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। आज से अपनी बुद्धि में ये स्मृति धारण करिए कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और देखिए, परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को मान्य है। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजे। परमात्मा इतना बड़ा लिंगाकार नहीं है, ये तो भक्ति में पूजन के लिए उनका प्रतीक बनाया गया। रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाते, वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाते हैं। एक और विवेक से समझने की बात आपको बताएं, शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाते, देखे हैं ऐसे चित्र? हाँ, आगे शिवलिंग है और शंकर जी को ध्यान अवस्था में तपस्वी मुद्रा में बताते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? परमात्मा को तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है ना, परमात्मा से ऊपर तो कोई है ही नहीं। शंकर जी ध्यान करते हैं मीन्स उनके ऊपर भी कोई परम चैतन्य शक्ति है जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। इसलिए देखिए, शिवलिंग पर तीन रेखा करते हैं और ऊपर बिंदु करते हैं, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव के रचयिता है। अमरनाथ सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, नेपाल पशुपतिनाथ, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का ये यादगार प्रतीक है। गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, ध्यान अवस्था में दिखाते हैं तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम शक्ति परमात्मा, जिससे उनको बुद्धत्व मिला। मुसलमान भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, वो तो स्पष्ट कहते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। हम हिंदी भाषा में कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। मुस्लिम भाई बहने अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। वे स्पष्ट कहते हैं नूरे इलाही, इलाही मीन्स अलौकिक अभौतिक ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है, अलौकिक अभौतिक ज्योति बिंदु स्वरूप। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने भी मोमबत्ती जलाकर प्रेयर करते हैं। गुरु नानक जी ने भी एक निराकार की महिमा की, एक ओमकार निराकार सतनाम अकाल मूरत कहते। तो देखिए विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म हैं और उनके जो मूल धर्म स्थापक है, उन सब का मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। उनका अपना दिव्याकार ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा को हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम नहीं। हमारे नाम शरीर से, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से। हमारे नाम और गुण अलग अलग भी होते हैं। नाम शांतिलाल होगा लेकिन अशांति रहते हैं। नाम मनसुखलाल होगा पर मन से दुखी ही रहते हैं। हमारे नाम और गुण अलग अलग भी होते हैं। परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याण। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी और सुंदर माना सदा पावन है। उनके अनेक गुणवाच्यक कर्तव्यवाच्यक नाम भक्ति में हैं। सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, भोलानाथ कहते हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, उनके अनेक गुणवाचक, अनेक कर्तव्यवाचक नाम है। पर हमें ये नामों की लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है, हम परमात्मा के मूल नाम को याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से यहां हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा मींस पिता, परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे। हमारे लिए कितने गर्व और खुशी की बात है कि हम परमात्मा के बच्चे। खुशी है सबको, देखो कोई हाथ नहीं हिला रहा, कितने आश्चर्य की बात है। एक डॉक्टर, एडवोकेट, उद्योगपति, ऑफिसर, मिनिस्टर के बेटे को नशा होता है कि मेरे पिता ऑफिसर है, मिनिस्टर है, एमएलए है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें कितना गर्व होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। पर क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते नहीं, हमारा उनसे संबंध नहीं, हमें प्राप्ति का अनुभव नहीं, इसलिए देखो खुशी भी नहीं। जिस पिता परमात्मा की भक्ति में हम कितनी महिमा करते, क्या गाते हैं, तेरी महिमा अपरंपार, पतित पावन कहते हैं, सर्व के सदगति दाता कहते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं, शांति दाता कहते हैं, तू प्यार का सागर कहते हैं। कितनी भक्ति में हम महिमा करते हैं। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर और दाता परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए? आप अपने बच्चों को अपने से भी बढ़कर देखना चाहते हैं ना? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम कैसे होने चाहिए, कभी सोचते हैं? पिता परमात्मा शांति दाता, सुख दाता, और हम दुखी अशांत क्यों हैं? कभी सोचते हैं खुद के बारे में? वो सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता का सागर, और हम पतित विकारों के वश क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, पिता परमात्मा को भूल गए। तो ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा, देखो कौन सा कार्य करते। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्यात्मा नहीं कर सकते। परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते। वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, तब परमात्मा आते हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं और हमें अज्ञानता, विस्मृति, विकृति, जिसको ही माया कहा जाता है, उन विकारों से छुड़ाते हैं, पावन बनाते हैं। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं कोई काल्पनिक नहीं है, असुर कोई भयानक दूसरी योनि के प्राणी नहीं है। आज हम ही असुर बन गए हैं, विकारों के वश हो गए हैं। जब हम अपनी पवित्रता और दैवी गुण गंवा देते हैं और व्यसन, विकार, बुराई, अवगुण के वशीभूत हो जाते हैं, हम ही असुर बन जाते हैं। अब हमें फिर से देवता बनना है और परमात्मा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। सत्य ज्ञान, पवित्रता और योग बल से परमात्मा हमें पावन बनाते हैं और संसार को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते। अगर परमात्मा इस दुनिया में कभी आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हमने कैसे जाना कि वो सुखदाता है, प्यार का सागर। परमात्मा इस दुनिया में आकर हम आत्माओं के कल्याण का कार्य करते हैं, तब तो हम उससे याद करते हैं, वरना हम उनको क्यों याद करते हैं? परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं, कब आते? हर एक भारतवासी जानते हैं कौन सा श्लोक बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवति भारत। हर एक भारतवासी जानते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना, एग्जैक्टली कब? जब जब धर्म ग्लानी होती है तब परमात्मा आते हैं, ये आप जानते हैं, पर जब जब माना कब, किस युग में अति धर्म ग्लानी होती? कलयुग। कलयुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय, कलयुग अंत सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम कलयुगी पतित मनुष्यों को भक्ति का फल, सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। जिस ज्ञान और योग से पवित्र योगी बनना है, आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए लायक बनना है, तो परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? इसलिए परमात्मा केवल हर कलयुग के अंत अति धर्म ग्लानी के समय सृष्टि पर आते हैं और आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। आप सभी किसमें आए हैं? ये ज्ञान यज्ञ है, ये मटेरियल यज्ञ नहीं है। यहाँ कोई जौ घी तिल होमने की बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। जो कलियुगी नर नारी इस ज्ञान यज्ञ में खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, वो आने वाली सतयुगी दुनिया के लायक देवी देवता बनते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान और योग को समझकर खुद की बुराइयां कमजोरियां विकार खत्म करने हैं, अपने जीवन को पवित्र योगी जो अभी बनाएंगे वे सतयुगी दुनिया के लायक देवी देवता बनते हैं। कौन कौन बनना चाहेंगे? हमें अपने जीवन को पवित्र योगी दिव्य बनाना है, हमें चेंज एजेंट बनना है, नई दुनिया के सूत्रधार बनना। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते, परमात्मा इस दुनिया में रहते तो हम उसके अवतरण की बात क्यों करते हैं? हम उनको क्यों पुकारते हैं, बुलाते हैं? आज सुबह के प्रथम लेसन में भी आप सभी ने समझा कि हम आत्माएं भी इस दुनिया की निवासी नहीं हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। तब तो कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो कहां से आए हैं, कहां जाना है? हम आत्माओं का असली घर परमधाम है। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो हम आत्माओं का असली घर परमधाम है। नीचे आसमानी रंग से जो बताया है वो ये साकार मनुष्य लोक, ये फिजिकल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत है, पांच तत्वों से ये दुनिया बनी है, इसलिए हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण करते हैं। हमारे लिए भी ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। जब ये दुनिया हमारा घर नहीं है तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? जब भी परमात्मा को याद करते हैं, हमारी नजर और बुद्धि कहां जाती है? ऊपर जाती। हम कहते ही है, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। परमात्मा के लिए हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला देख रहा है। एक दो को याद कराते हैं ना? हाँ? जो हम आत्माओं का असली घर है परमधाम, वही पिता परमात्मा का भी असली घर है। ये है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को दिया है। ऐसे कल्याणकारी सुखदाता सदा पावन पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए? जो थोड़ा ही सुख देते हैं बाकी दुख ही देते रहते हैं, उन मित्र संबंधियों को हम कितना याद करते हैं, जो सदा सुख देते हैं, पावन बनाते हैं। हम आत्माओं की जीवन नैया को पार उतारते हैं, उस पिता को हमें कितना याद करना चाहिए। अब तक आप अपनी अपनी भावना अनुसार, अपनी मान्यता अनुसार भगवान को याद करते रहे, उससे भक्ति कहते हैं। अब हमें यथार्थ परिचय से उस पिता को याद करना है, उसको योग कहते हैं। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, अलर्ट होकर। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेकर ना बैठे। सभी एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। आंखें खुली रखकर बैठ। अक्सर परमात्मा को याद करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, फिर सो जाते हैं, निंद्रा में चले जाते हैं। सोना नहीं है, परमात्मा की याद के दिव्य अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें जागृत होकर बैठना है। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। खुद को आत्मा समझकर हमें मन ही मन पिता परमात्मा को याद करना है। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री दूंगी। आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, आवाज नहीं करना है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, अंतर मन का आवाज, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए जो विचार मैं आपको दूं, मुख से रिपीट नहीं करना है, पर मन ही मन रिवाइज कर, अर्थ समझ कर रियलाइज करना है, उस अनुभूति में स्थित होना है। मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर को धारण करने वाली कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। मैं मन की आंख से असली घर परम धाम में पहुंच गई। प्यारे पिता, परम पिता भी परम धाम के निवासी है। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजती रही। आज मुझे आपका सत्य परिचय प्राप्त हुआ है। मुझे अपार खुशी मेरे मन का अंधकार समाप्त हो गया। मेरा विवेक जाग गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया। प्यारे शिव बाबा, जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन रूहानी शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, वो संपूर्ण सत्य ज्ञान सर्व दिव्य गुण सभी रूहानी शक्तियां मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। शांति के सागर अखुट शांति के दाता। प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी अमर संतान, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति दूत बनकर मुझे सर्वत्र शांति फैलानी है। प्यार के सागर बाबा, प्रेम स्वरूप बनकर प्यार से हर कर्म करना है, सबके साथ प्यार से चलना है, सबको सुख देना है। मेरे सदा पावन सर्वशक्तिमान बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ, मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी अमर संतान, मैं शांत और शुद्ध हूं, मैं एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। तो दीदी जी का, गीता दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और सभी कर्तव्य ध्वनि से दीदी जी का धन्यवाद करें। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो दुनिया की सबसे बड़ी आज बड़ा जो क्वेश्चन है, बड़ी टॉपिक है, परमात्मा कौन है, कैसा है, वो हमारे लिए क्या करता है, वो कैसे इस धरती पर अवतरित होता है और कैसे हमारे हमें सुख शांति दाता बनकर हमें सुख शांति देते हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को दीदी जी ने इतनी सरलता से और सहजता से हमारे बीच रखा और हमें स्पष्ट किया, तो मैं समझती हूँ आज आप सबकी खोज जरूर पूरी हो गई होगी कि जो आज विद्वान पंडित गुरु सन्यासी सभी खोज रहे हैं और हमने इतने